वैष्णवाय नौ नाथों की संप्रदायों में इनका प्रमुख स्थान बताए प्रथम स्थान गुरु मच्छर नाथ का। ये अवतारी रूप कहा है इन नाथों के प्रथम गुरु है दत्तात्रेय भगवान बताए हरि नारायण के अवतारी। गोरखनाथ का ध्यान लगाए कैसे जन्म हुआ है भक्त
माई। तुम भिक्षा तो दे रही हो परंतु तुम कुछ दुखी मन से भिक्षा दे रही हो।
नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो
नहीं माई, हम भिक्षुक जरूर हैं परंतु तुम्हारी इस तरह दुखी होकर भिक्षा दिए हुए भोजन को हम ग्रहण नहीं कर सकते।
नहीं योगीराज, आप तो अनावश्यक संशय कर रहे हो।
नहीं माई, हमारा संशय गलत नहीं। हम सन्यासी हैं और अपने विवेक से सब कुछ समझ लेते हैं।
मुझे क्षमा कर दीजिए योगीराज।
नहीं नहीं माई, इसमें क्षमा करने जैसा तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे रहन सहन को देखकर तो लगता है तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि तुम्हें कोई बहुत भारी कष्ट है।
महाराज, जिसके भाग्य में सदैव दुख की काली छाया होती है उसका जीवन हमेशा एक उजड़े हुए चमन की तरह होता है।
नहीं देवी, भाग्य की रेखा तो कर्म के अनुसार बदलती रहती है।
मैं नहीं मानती योगीराज।
तुम्हें मानना होगा माई।
मैंने जब तक दान पुण्य तीर्थ सभी शुभ कर्मों को करके देखा है परंतु कोई भी शुभ कर्म मेरे कर्म की रेखा को नहीं बदल सका।
धैर्य रखो माई, हो सकता है अभी तुम्हारा शुभ समय नहीं आया हो, क्योंकि विधाता के यहाँ देर है अंधेर नहीं।
आप ये विश्वास के साथ कह सकते हो योगीराज?
विश्वास तो अपनी आत्मा व सच्ची लगन में होता है। तुम अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है हमें बताने से तुम्हारा कुछ काम हो जाए।
यदि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल है तो बताइए, मुझ दुखियारी पर कृपा कीजिए योगीराज, कृपा कीजिए।
गुरुदेव, आपका तो जन्म ही संसार के प्राणियों को दुखों को दूर करने के लिए हुआ है। आप इस दुखिया के कष्टों का निवारण कीजिए गुरुदेव।
हाँ हाँ गुरुदेव, हमसे इस माई का दुख नहीं देखा जाता। आप इसकी झोली में अपनी कृपा का प्रसाद डाल दीजिए। आप कोई चमत्कार दिखा दीजिए गुरुदेव और इसके दुखों का हरण कीजिए।
लो माई, इस भस्म को ऋतुवंती होने के पश्चात स्नान करके खीर में मिलाकर खा लेना। तुम्हारे यहाँ हरि नारायण भगवान का अंशी अवतार पैदा होगा जो रिद्धि सिद्धि का स्वामी होगा। तुम्हारे पुत्र का यश सारे संसार में फैलेगा। अच्छा तो माई, अब हम चलते हैं और आज से ठीक 12 वर्ष बाद हम दोबारा आएंगे, तभी आकर तुम्हारे पुत्र के दर्शन करेंगे।
प्रणाम महाराज।
तुम्हारा कल्याण हो। अलग निरंजन।
की बातों में मत आए, मत खा लेना तू ये भस्मी, ये नुकसान तुझे पहुंचाए जादू भरी ये विष की पुड़िया, मृत्यु तेरी ना हो जाए करते हैं बेहोश ये साधु, बर्तन भांडे सब ले जाए करते हैं बेहोश ये साधु।
सरस्वती आज क्या बात है, बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो, कोई खास बात है?
नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही।
कुछ ना कुछ तो है, ऐसी कौन सी बात है जिससे फूली नहीं समा रही या फिर बताना नहीं चाहती?
तुम तो बिना वजह परेशान हो रही हो, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है।
रहने दे, झूठ से पेट मत भर, अगर ऐसा नहीं तो अपने मन की बात हमें क्यों नहीं बताती?
तुम तो छोटी छोटी बातों पर विवाद लेकर बैठ जाती हो।
रहने दे बहन, तुम क्यों इसके पीछे पड़ रही हो, जब ये कुछ बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं।
कैसे कहूँ, मुझे शर्म आती है।
अरे बहन, तू तो बड़ी बाबली है, बहन भला संग सहेलियों में भी कुछ शर्म होती है?
मेरे आंगन में बहुत जल्दी एक खुशी की लहर आने वाली है।
अच्छा, जरा हम भी तो सुने वो कौन सी खुशी आने वाली है।
एक साधु महाराज ने कहा है कि मैं शीघ्र ही माँ बन जाऊंगी।
साधु महाराज ने कहा है माँ बन जाओगी?
अच्छा, तो ये है तेरी खुशी का कारण?
हाँ बहन हाँ, मेरे घर में अपार खुशियाँ होंगी, छोटे बच्चे की किलकारी से मेरा घर आंगन महक उठेगा।
तू तो बाकी बहुत भोली है, इतना भी नहीं जानती कि ये सब तेरे झूठे सपने हैं।
झूठे सपने? नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो।
अरे बहन, ये हम नहीं सारा संसार कहता है, ऐसे साधु महात्माओं के भेष में जाने कितने चोर उचक्के घूमते हैं।
नहीं नहीं बहन, वो योगीराज कोई साधारण साधु संत नहीं थे, उनके मस्तक पर चंद्रमा का तेज अलग ही दिखाई दे रहा था।
बस यही तो तुम्हारा बहम है।
बहन, हमने तो आज तक कहीं ना देखा ना सुना कि किसी बाबा की भस्म से बच्चे पैदा हुए हैं।
बहन, अगर तुम हमारी मानो तो भूलकर भी उस बाबा की भस्म मत खा लेना।
परंतु क्यों बहन?
अरे बाबली, अगर साधु बाबाओं की भस्मी से ही औरतें गर्भवती हो जाएं, तो सारे संसार में दीपक लेकर ढूंढने से भी बांझ स्त्री नहीं मिलेंगी।
एक बात बता, कहीं साधु योगी सन्यासी हाथ में भिक्षा पात्र लेकर गांव-गांव घूमते हैं, उनका इस दुनियादारी से क्या लेना देना, वो तो राम नाम में मस्त रूखी सूखी खाकर जंगल में पड़े रहते हैं।
नहीं नहीं बहन, वो सच्चे साधु संत हैं।
बहन सरस्वती, तू पतिव्रता नारी है, जरा विचार कर, ऐसा कुछ हुआ तो तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हाँ, आगे तेरी मर्जी है।
नहीं नहीं बहन, अच्छा हुआ जो तुमने सही समय पर सलाह देकर मेरा पतिव्रत धर्म बचा लिया, परंतु उस बाबा की भस्म का क्या करूँ?
अरे फेंक दे उसे किसी कूड़े के गड्ढे में।
ठीक है बहन।
भस्मी से
चंद्रनाथ भी वापस आए सरस्वती के दरवाजे पर, योगी राज फिर अलख जगाए सरस्वती के दरवाजे पे। अलख निरंजन की धुन सुन के सरस्वती द्वारे पे आए, गुरु के सन्मुख कैसे जाऊं, मन ही मन वो तो घबराए श्राप न दे डाले ये योगी, थर थर दिल ये कांपता जाए मच्छंद्रनाथ के सम्मुख आई, भिक्षा देती हाथ बढ़ाए भिक्षा बाद में लूंगा देवी, पहले हमको देव बताए पुत्र प्राप्ति हो गई तुम तो, सूच न सुब ये हमें सुनाए मुख से कुछ ना बोल सकी वो,
अलख निरंजन।
लीजिए महाराज।
माई ये क्या, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम वही हैं जो आज से 12 साल पहले आए थे। अब तो तुम्हारा बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, क्या हमें उसके दर्शन नहीं कराओगी? अरे माई, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे हमें जानती ही नहीं।
गुरुदेव, माँ की ममता ऐसी ही होती है, बेचारी सोच रही है कि कहीं साधु महाराज मेरे लाल पर कोई जादू टोना नहीं कर जाए।
ओ माई, तू हमें ऐसे ही नहीं टाल सकती, हमें तेरी भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो बस तेरे लाल के दर्शन के लिए आए हैं। क्या हमारी भस्म असफल हो गई, संतान ही नहीं हुई, या फिर संतान पैदा होकर नष्ट हो गई?
नहीं नहीं योगीराज, मैं अभागिन हूँ, मुझे अपने श्राप से अभी भस्म कर दीजिए, मैं इस संसार में जीना नहीं चाहती, मुझे मार डालिए योगीराज, मुझे मार डालिए।
धीरज रखो माता, और हमें साफ साफ बताओ क्या बात है।
आपकी दी हुई भस्म खाई ही नहीं महाराज।
अब रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, माई हमें उस भस्म के बारे में बताओ, तुमने उसका क्या किया?
महाराज, मैंने आपकी उस भस्म को कूड़े के गड्ढे में फेंक दिया था।
कूड़े के गड्ढे में?
हाँ महाराज।
माई हमें शीघ्रता से उस स्थान पर ले चलो जहाँ तुमने उस भस्म को फेंका था।
चलिए महाराज। महाराज, शायद इसी गड्ढे में मैंने उस भस्म को फेंका था।
मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता, उस भस्म ने अपना चमत्कार अवश्य दिखाया होगा, और उससे उत्पन्न हुआ बालक अवश्य यहीं कहीं होगा।
हे सूर्य पुत्र हरि नारायण, अगर तुम्हारा जन्म हो गया हो तो बाहर आओ। हे नागपंत के कुलदीपक, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा गुरु मच्छेंद्रनाथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
हे गुरुदेव, मैं यहाँ गोबर के ढेर के नीचे गहरे गड्ढे में दबा हुआ हूँ, आप कृपा कर मुझे बाहर निकालिए। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर गोबर का वजन भारी मात्रा में है, मेरा स्वयं निकलना असंभव है, कृपा कर आप ही मुझे बाहर निकालिए।
ठीक है बेटे, हम स्वयं ही तुम्हें बाहर निकालते हैं।
I'm gonna get it.
तुम सूर्य के पुत्र हो, तुम्हारा यश सूर्य के समान सारे संसार में फैलेगा। चलो पुत्र।
चलिए गुरुदेव।
योगीराज, योगीराज, आप ऐसे मत जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए योगीराज, मुझे भगवान पर कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए।
माई, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं?
योगीराज, आप इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं इसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगी।
माई, अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने स्वयं ही अपने जीवन में कांटे बोए हैं, और जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है, यही संसार का नियम है।
मैं भली भांति जानती हूँ योगीराज, वैसे तो मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दीजिए।
माई, विधाता ने शायद तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं, और मैं विधाता के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि विधाता प्राणी के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। बरसों बाद आज ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है, परंतु
परंतु क्या गुरुजी?
मुझे सबसे ज्यादा स्वाद तेरे लाए हुए दही बड़ों में आया है। बस तुम जाकर वहीं से थोड़े से दही बड़े और ले आओ।
हाँ माता।
लेकिन मैंने तुझे अभी ढेर सारा भोजन दिया था, उससे तेरा पेट नहीं भरा?
ना 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 ना, दोबारा आने का प्रयोजन तो माता कुछ और ही है।
तो फिर इधर उधर की बातें न करके अपने आने का कारण बता।
मैंने तुम्हारा दिया हुआ भोजन अपने गुरुदेव को जाकर के दिया। उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन को ग्रहण किया और तुम्हारे हाथ के बनाए हुए दही बड़े तो गुरुजी को इतने अच्छे लगे कि क्या बताऊं। आप मुझे थोड़े से दही बड़े और दे दो माता।
अच्छा तो अब समझी, सारे भोजन को खुद हड़प कर पेट नहीं भरा तो गुरुजी का बहाना बना रहा है।
नहीं नहीं माई, मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो।
दही बड़े तो क्या, तुम्हें एक अन्न का दाना भी नहीं मिलेगा।
मेरे लिए तुम जो चाहो कह लो माता, परंतु मेरे गुरुदेव के लिए थोड़ा सा भोजन और दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ।
मैंने कह दिया दोबारा भोजन नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए तुम मेरे पांव पकड़ो या हाथ जोड़ो।
बर्बाद करता है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, उसके बदले में जो आप मुझसे चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा।
तो ठीक है, तुझे दही बड़े लाके देती हूँ, परंतु इसके बदले तुझे अपनी आँख निकाल कर मुझे देनी होगी।
माता आँख तो बहुत छोटी चीज है, अगर इसके लिए तुम मेरे प्राण भी मांग लो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
ये ले, तू आँख निकाल कर रख, मैं तेरे लिए दही बड़े लाके देती हूँ।
ठीक है माता। गुरुदेव दही बड़े।
अरे बेटा ये सब क्या है, क्या हुआ तुम्हारी आंख को?
जी जी कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी सी पीड़ा हो रही है।
पीड़ा हो रही है, आखिर हुआ क्या है, हमें भी तो बताओ।
कुछ भी तो नहीं गुरुजी।
तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। बेटा
गुरुजी मुझे तो पहले जैसा दिखाई दे रहा है।
गोरख आज तुमने गुरु भक्ति का ऐसा प्रमाण दिया है जिसे संसार युगों युगों तक याद रखेगा। संसार का हर गुरु तुम पर गर्व करेगा, तुम जैसा गुरु भक्त दूसरा कोई नहीं होगा। एक दिन तुम बहुत बड़े सिद्ध योगी कहलाओगे, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी।
बच्चों तुम यहाँ शोर मत करो, हमें अपना काम करने दो।
बाबा आप हमारा गाड़ीवान बना दे, हम यहाँ से चले जाएंगे।
लाओ मिट्टी।
भूत भूत देखो भूत, अरे भूत।
देखो ये क्या हो गया, कुछ बच्चे जिद करके मुझसे गाड़ीवान बनवाने लगे। मैंने गाड़ीवान तो बना दिया, मगर अचानक ये बच्चा।
बेटा गोरख, हैरानी की कोई बात नहीं है। तुम्हारे संजीवन मंत्र के जाप के कारण ही इस माटी के पुतले में प्राण डल गए हैं। पुत्र गोरखनाथ, अब तुम पूर्ण सिद्ध योगी बन गए हो। करभंजन नाथ की आत्मा का प्रवेश हुआ है, अब यहाँ से प्रस्थान की तैयारी करें।
जी, आप हमें छोड़कर मत जाएं, आप कुछ दिन और हमारे गांव में रुक जाओ।
देखो, साधु के एक स्थान पर ठहरने से उसमें गंधलापन आ जाता है।
गुरुदेव, कृपा करके इस बच्चे को तो इस गांव में ही हमारे पास छोड़ जाओ, हम इसे देखकर आपको याद कर लिया करेंगे।
ठीक है, लेकिन याद रखना, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। इसका लालन पालन ठीक प्रकार से करना। आज से हम इसका नाम गहनी नाथ रखते हैं। यह करभंजन का अवतार है, इसे भगवान शंकर का अवतार ही समझना। लो गंगा देवी, संभालो इस बच्चे को।
ठीक है महाराज।
बेटा गोरख, अब तुम यहाँ से जाकर बद्रीनाथ आश्रम में पहुंचकर शंकर भगवान का ध्यान कर तपस्या करो और शिव जी से वरदान प्राप्त करो, तभी तुम्हारी समस्त विद्याएं पूर्ण होंगी।
जैसी आज्ञा गुरुदेव।
और अब हम यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
खोलो भक्तराज।
शंकर का ध्यान लगाए, शिव जी की कृपा के बिना तो सिद्धि सफल नहीं हो पाए। होंगे प्रसन्न जो शिव शंकर जी, मिले गबर तुमको बतलाए। बोले गोरख सुनो गुरु जी, कौन विधि ये हम अपनाए। बोले गोरख सुनो गुरु जी,
Thank you.
अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्या चाहते हो?
भगवान, मैं सिर्फ ये वर मांगता हूँ कि मेरी समस्त विद्याएं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं और मैं आपके चरणों का सदा दास बना रहूं।
ऐसा ही होगा भक्तराज, तुमने जो भी विद्याएं सीखी हैं वो सब परिपक्व हो जाएंगी।
अपने गुरु से सीखी हुई विद्या का चमत्कार दिखाता हूँ और इन अमों को वापस लटका देता हूँ।
सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाओ तो जाने।
रहे फरमा
संभव बना देना ही सिद्ध योगी की करामात है।
वही सिद्ध योगी जो त्रियाराज में भोग विलास की दलदल में फंसे पड़े हैं, जिसके कारण नाथ पंथ की पूरे संसार में थू-थू हो रही है।
बजाना आता है?
देखो मैं ढोलक बजाकर दिखाता हूँ।
सोचे गोरख हनुमान को यहाँ आने बंधन मुक्त दिया करवाए, मिली विपत्ति से छुटकारा। हनुमान प्रभु से फरमाए, मिली विपत्ति से छुटकारा।
ये तो मेरे बाहुबल का घोर अपमान है। अपने समय रहते मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। अब मैं हर तरह से गोरखनाथ का साथ दूंगा। चलो हम एक बार गौरख के पास चलते हैं।
चलो पवन पुत्र। का गुरु है, उसे ले जाने का उसे पूर्ण अधिकार है। आप व्यर्थ में क्रोध ना करें।
हनुमान ने दिया जगाए, हनुमान को सम्मुख देखा, हाथ जोड़ रानी फरमाए, कैसे प्रभु यह आप पधारे। अर्ध रात्रि में बतलाए, बोले हनुमत सुन लो रानी, संकट तुम पर गया है छाए, बोले हनुमत सुन लो रानी। हनुमान के वचन सुने तो रानी मैं नाकिन घबरा, ऐसा कौन सा संकट स्वामी, कृपा करके आप बताए, आपके होते हुए प्रभु जी कौन सा संकट हमें सताए। हनुमान जी बोले रानी सुनो बात ये ध्यान लगाए, मच्छिंद्र नाथ को यहाँ पे रहते 12 बरस हुए बतलाए, उनके द्वारा तुमने रानी एक पुत्र भी लिया है पाए, इच्छा पूरी हुई तुम्हारी, सजाए कालिंगा और सारी सहेलियां, रथ में अपने लई बिठाए, दिया राज की राजधानी में किया है प्रवेश बताए, संग मुंड के प्रथम द्वार पे गोरख ने रथ रोका जाए, बोली कलिंगा गोरख जी से नारी का लो भेष बनाए, नहीं तो संकट में फंस जावे, करना चाहे है संगीत में परिपूर्ण वो कला, आपको वो दिखलाए, करे मनोरंजन वो आपका, आज्ञा आपकी जो हो जाए, जाओ उन्हें दरबार मिलाओ, मैं नाकिन रानी फरमाए, जाओ उन्हें दरबार मिलाओ।
दूसरी ना मिल पा
तुझको बतलाए थर थर कांप रही थी कलिंगा, चंद्रनाथ के पास में आए मखमली पलंग पे बैठे हैं गुरुजी, देख उन्हें गोरख हर साए मखमली पलंग पे बैठे गुरुजी। गुरु के चरण छुए गोरख ने, गुरु ने हृदय लिए लगाए, कुशल क्षेम पूछी गुरुवर ने, मुश्किल से त्रिया राज में। सुनो गुरु जी हम तो आए गोरखनाथ की करे प्रशंसा, दिया है आशीर्वाद बताए हाथ जोड़ कर गोरखनाथ जी। गुरु को फिर ये वचन सुनाए सिद्ध योगी हो आप गुरु जी, आपके जैसा दूजा नाए सारी विद्याओं से पूर्ण हो,
¡Gracias!
बोलो उसे कहा छोड़ के आए आप नहीं तो कहा गुरु जी अच्छी तरह स्नान कराए पटक पटक के उसको धोया खाल छत पे दही सुखाए गोरखनाथ का उत्तर सुनकर चौकी रानी और घबराए गोरखनाथ का उत्तर सुनकर स्वामी